ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपात् अहं वंदे परमानंद माधवम् श्री गुरु दीन दारणम्। श्रीमद्भागवतम महापुराण स्कंद 5 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 16। महाराज अग्निद्र का चरित्र, इसकी चर्चा यहाँ चल रही है। तो इस श्लोक को आप पहले मेरे साथ बोलिए शब्दों को। न त्वाम त्यज्यामि दयितम् द्विजदेव दत्तम् यस्मिन् मना दृक् अपि न नव्याति लग्नम् माम् चारुशृंगी अर्हसि नेतुम् अनुव्रतम् ते चितम् यदा प्रतिसरन्तु शिवा सचिव्या। न त्वां त्यज्यामि दयितं द्विजदेव दत्तां यस्मिन् मनोदृगपि नो न व्याति लग्नम् मां चारुशृंगसि अर्हसि नेतुम् अनुव्रतम् ते चित्तं यता प्रतिसरन्तो शिवाः सचिव्यः। न त्वां त्यज्यामि दयितं द्विजदेव दत्तां यस्मिन् मनोदृगपि नो न व्याति लग्नम् मां चारुशृंगसि अर्हसि नेतुम् अनुव्रतम् ते चित्तं यता प्रतिसरन्तो शिवाः सचिव्यः। दोहराइए। न त्वां त्यज्यामि दयितां द्विजदेव दत्तां यस्मिन् मनो न याति लग्नम् माम चारो शिंगसी अरहसी ने तुम अतु नो व्रतम ते चित्तां यदा प्रतिसरन्तो शिवा सचिव्या। और कोई ना त्वां त्यजामि दयितां द्विजदेव दत्तां यस्मिन् मनोदगापि नो न व्याति लग्नम्। माम चारु शिंगसि अरहसि ने तुम अनुव्रतम ते चित्तां यता प्रतिसरन्तो शिवाः सचिव्या। ना त्वां त्यज्यामि दयितां द्विजदेव दत्तां यस्मिन् मनोदगापि नो न व्याति लग्नम्। माम चारु शिंगसि अरहसि ने तुम अनुव्रतम् ते चित्तां यता प्रतिसरन्तो शिवाः सचिव्या। वैष्णवीस माताएं को ना त्वां त्यज्यामि दयितां द्विजदेव दत्तां यस्मिन् मनोदगापि नो न व्याति लग्नम्। माम चारु शिंगसि अरहसि ने तुम अनुव्रतम् ते चित्तां यदा प्रतिसरन्तो शिवाः सचिव्या। ना त्वां त्यजामि दयितां द्विजदेव दत्तां यस्मिन् मनोदगापि नो न व्याति लग्नम्। माम चारु शिंगसि अरहसि ने तुम अनुव्रतम् ते चित्तां यता प्रतिसरन्तो शिवा सचिव्या। ना त्वां त्यजामि दयितां द्विजदेव दत्तां यस्मिन् मनो नो न व्याति लग्नम्। माम चारु शिंगसि अरहसि ने तुम अनुव्रतम् ते चित्तां यदा सिरन्तो शिवा सचिव्या। ठीक है। न नहीं त्वाम तुमको त्यज्यामि छोड़ूंगा दयितम अत्यंत प्रिय द्विज देव द्विजदेव ब्राह्मणों के उपास्य देवता ब्रह्मा जी से दत्तम दिया हुआ यस्मिन जिसको मना मन दृक आँखें अपि भी न मेरा न व्याति दूर नहीं जाता लग्नम दृढ़ता पूर्वक लगा हुआ माम मुझको चारुशृंगी हे सुंदर उन्नत पुरोजों वाली स्त्री अरहसि तुम्हें चाहिए ने तुम पथ प्रदर्शन करना अनुव्रतम अनुयायी ते तुम्हारा चित्तम आकांक्षा यथा जहाँ कहीं भी प्रतिसरंतु साथ चलें, शिवाह अनुकूल सचिव मित्रगण सखियां। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की ब्राह्मणों के द्वारा पूजित ब्रह्मा जी ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके तुमको मुझे दिया है, इसलिए मैं तुमसे मिल पाया हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरे मन तथा नेत्र तुम्ही पर टिके हैं और वे किसी तरह दूर नहीं किए जा सकते। हे सुंदर उन्नत उरोजों वाली बाला, मैं तुम्हारा अनुचर हूँ। तुम मुझे जहाँ भी चाहें ले जा सकती हो और तुम्हारी सखियाँ भी मेरे साथ चल सकती हैं। तात्पर्य, जब अग्निद्र अपनी दुर्बलता को बिना झिझक के स्वीकार करता है, वह पूर्वचित्ति पर मोहित था, अतः इसके पूर्व कि वह यह कहे कि मुझे तुमसे क्या प्रयोजन, वह उसके साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त करता है। वह इतना मोहित था कि उसके साथ कहीं भी जाने को तैयार था, चाहे वह स्वर्ग हो या नरक। जब कोई कामासक्त हो उठता है तो वह बिना किसी शर्त के स्त्री के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। इस संबंध में शिला मध्वाचार्य का कथन है कि जब कोई सनकी व्यक्ति की तरह हंसी मजाक करने लगता है तो वह कुछ भी कह सकता है, किंतु उसके शब्द निरर्थक होते हैं। ओम ज्ञान तिम्रदस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुभदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावदेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताक्ष। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभिश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी औरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री वृंदावन धाम में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, और यहाँ इस सभा में बहुत वरिष्ठ भक्त भी बैठे हैं, और श्रीमान रमाकांत प्रभु जी को भी मैं याचना करता हूँ कि मेरे को शक्ति प्रदान करें। वो बहुत सुंदर कथावाचक हैं, लेकिन मैं उनसे कृपा याचना करता हूँ कि मैं शिला प्रभुपाद की कृपा से और सब भक्तों की कृपा से कुछ इस संदर्भ में बोलने का साहस कर सकूं। तो प्रसंग तो चल ही रहा है, ज़्यादा पीछे नहीं इसको दोहराएंगे। राजा अग्निद्र को पूर्व चित्ति प्राप्त हुई ब्रह्मा जी की कृपा से, और वो पूर्व चित्ति जो अप्सरा थी उसमें पूर्ण रूप से मोहित हो चुके हैं, और उसके रूप को देख करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे हैं। तो जैसा यहाँ हम पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद हमको बताते हैं तात्पर्य में, जो ये भगवान कहते हैं, काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भवा। ये जो काम और क्रोध है ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, और ये काम वैसा ही जब भगवत प्रेम जिस प्रकार से यहाँ आकर के वो काम में परिवर्तित हो जाता है, जैसे दूध में इमली का अगर संग करा दिया जाए, संसर्ग कर दिया जाए, तो वो क्या दही बन जाती है। इसी प्रकार से जो हमारी वास्तविक हमारा जो कृष्ण प्रेम है वो काम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो है महाशनो महापापमा विधेय इनम वैरिणम, भगवान कहते हैं कि ये काम और क्रोध जो है ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और इस बात को सुन लेना, और इस बात को सुनने से हम उस बात को मान लेना, ये आवश्यक नहीं है। जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस संसार में हम आए हैं भोग वासनाओं की कामना लेकर के, उस संसार में अगर भगवान भी हमारे को कह देते हैं ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है, तो हम उस पे एकदम से उसको स्वीकार नहीं करते। हम अपनी बुद्धि अपने तर्क से इस संसार में हम जिस प्रयोजन से आए थे उस प्रयोजन को सिद्ध करने की हम चेष्टा करते हैं। हमारे जीवन में अनेकों घटनाएं घटती हैं, लेकिन हर एक घटना का जब परिणाम हम देखते हैं तब भी हम उस पर विश्वास नहीं करते, और हम आगे प्रयास करते ही रहते हैं कि शायद इस बार शायद मैं जिस प्रयोजन से, मैं जिस उद्देश्य से इस संसार में आया, जिस उद्देश्य से माँ के गर्भ में मैं 9 महीने तक उल्टा लटका, आज मेरे को कहा जा रहा है कि अशाश्वतम दुखम, ये संसार जो है अशाश्वतम है, ये दुखालय है, तो इस बात को स्वीकार करना हमारे लिए सहज नहीं हो पाता। यहाँ पर महाराजा अग्निद्र जो मुख्य बात है इस श्लोक में वो ये है कि ब्राह्मणों के द्वारा पूजित ब्रह्मा जी ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके, तो ब्रह्मा जी ने उनको अनुग्रहित किया और उनको पूर्व चित्ति प्राप्त हुई। तो भगवान भी कहते ही हैं भगवत गीता में कि कांक्षतम कर्मणाम सिद्धिम यजंता इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जब हमारे मन में सकाम कामनाएं उत्पन्न होती हैं तो हम देवताओं की शरण ले लेते हैं, क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं कि देवता आपकी उन इच्छाओं को शीघ्र पूरा कर सकते हैं, मैं तो कुछ देर लगा सकता हूँ। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। पर हम देरी तो हमको बर्दाश्त नहीं, हमें तो तुरंत चाहिए। तो तुरंत चाहिए तो एक रास्ता ये भी है, देवताओं के शरण में जाओ। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कहते हैं, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे आपके मन में कोई कामना ना हो, अकाम हो, या सब प्रकार की कामनाएं भरी पड़ी हो, या आपको मुक्ति की ही कामना क्यों ना हो, आपको क्या करना चाहिए, उस परम पुरुष भगवान की तीव्रता से भक्ति करो, तीव्रता से भक्ति करो। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर अधिकतर ये देखा गया है कि जब हमारे मन में सकाम कामनाएं होती हैं तो हम देवताओं की शरण में जाते हैं। जितने भी असुर हैं बड़े बड़े, चाहे रावण हुआ, चाहे हिरण्यकश्यप हुआ, चाहे और जितने भी बड़े असुर हुए, वो या तो ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं या शिव जी की शरण में जाते हैं, भगवान की शरण लेना नहीं चाहते। क्योंकि भगवान के समक्ष भगवान का चिंतन करना या भगवान का स्मरण करने से उनको ये भय बना रहता है कि ये हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी या नहीं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उनको पुरुचित्ती को भेजा और पुरुचित्ती के द्वारा अब इनको 9 संतानों की प्राप्ति होगी, 9 संतानों की प्राप्ति होगी। और फिर वो अपने पुत्रों को छोड़ के चली जाएंगी, अपने पति को भी छोड़ के चली जाएंगी, पुत्रों को भी छोड़ के चली जाएंगी, जिस प्रयोजन से वो आई थी अपना कार्य सिद्ध करके चली जाएंगी। मेनका भी आई थी विश्वामित्र के साथ अपना प्रयोजन सिद्ध करके, अपनी पुत्री शकुंतला को भी छोड़ के चली गई और स्वयं भी चली गई। तो इस बात को अभी महाराजा अग्निद्र उस तरफ अभी नहीं सोच पा रहे थे। अभी उनकी इच्छा थी किसी तरीके से मेरे को पुरुचित्ती से मैं विवाह कर लूं और मैं संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाऊं। वो पुरुचित्ती के रूप को देख करके मोहित हो रहे थे। तो क्या पत्नी के प्राप्त होने से, सुंदर पत्नी के प्राप्त होने से क्या जीव सुखी हो सकता है? क्या इस बात का कहीं उल्लेख है कि आपके जीवन में अगर सुंदर रूपवान पत्नी आ जाए तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा? आवश्यक तो नहीं। एक क्या अगर 1 करोड़ पत्नियां भी आपके पास आ जाएं तो भी आपका मन शांत नहीं रह सकता जब तक आप उस शांताकारम की शरण नहीं लेंगे। महाराजा चित्रकेतु की कितनी पत्नियां थी, कितनी रानियां थी उनकी, 1 करोड़ रानियां राजा महाराजा चित्रकेतु की। और 1 करोड़ रानियां होने के बावजूद भी वो असंतुष्ट थे, एक पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। वो भी 1 करोड़ महारानियों के होते हुए भी उनको 1 पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। महर्षि अंगिरा उनके पास आए और उनसे हालचाल पूछा, क्या बात है, क्यों आपके चेहरे पे चिंताएं हैं? बहुत सारी बातें उन्होंने की और अंततः उन्होंने अपना दुखड़ा रो दिया कि मैं अपने पितरों को संतुष्ट करना चाहता हूँ, मेरे पितर भी जो हैं वो इस आशंका से चिंतित हैं कि कौन पिंडदान देगा, कौन जलदान देगा, मुझको पुत्र चाहिए। जब महर्षि अंगिरा ने देखा कि ये पूर्ण रूप से पुत्र के प्रति आसक्त हैं, तो उन्होंने फिर उनको वर दिया कि ठीक है, तुमको जो तुम्हारी बड़ी रानी हैं उनसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और जो आपको हर्ष और शोक दोनों प्रदान होगा, हर्ष और शोक दोनों मिलेगा। तो आप जानते ही हैं कि भाई किस प्रकार से उसको हर्ष और शोक दोनों हुए, बहुत संताप उसको हुआ, बहुत दुखी हो गया पुत्र के जाने से। कम आयु में ही उसका पुत्र चला गया, अन्य रानियों ने उसको विष दे करके मार दिया। जब राजा अपनी उस रानी के प्रति अधिक आसक्त हो गया जिससे उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो अन्य रानियों ने देखा कि हमको महाराजा अनदेखा कर रहे हैं, और उन्होंने ईर्ष्यावश उसको विष दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो वही पुत्र जो उसको हर्ष दे रहा था, वही पुत्र उनके शोक का कारण बना। फिर अंगिरा ऋषि आए और नारद मुनि भी साथ थे, उनको ज्ञान दिया, उनको उपदेश दिया। इस प्रकार से उन्होंने भगवान के दर्शन किए। कारण क्या था? कारण ये था कि उनके जीवन में भगवान के शुद्ध भक्त आए, तो कैसे भी करके उनमें कामनाएं तो थी, लेकिन भगवान के भक्तों के शुद्ध भक्तों के दर्शन करने से उनका ये प्रयोजन सिद्ध हो गया कि उनको साक्षात संकर्षण भगवान के दर्शन हो गए। और भगवान के दर्शन होने के बाद उनको एक भगवान के द्वारा कृपा मिली, भगवान के द्वारा उनको एक सुंदर विमान भी दिया, और उस विमान में जब वो बैठे हुए जा रहे थे अपनी बहुत सारी अप्सराओं के साथ विमान में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने शिव जी को पार्वती जी के साथ बैठे हुए और भरी सभा में सत्संग करते हुए, प्रवचन करते हुए देखा विमान से, और वो उनके ऊपर हंसी दिए शिव जी के ऊपर कि आप बातें तो कर रहे हो वैराग्य की, और आपने अपनी गोद में अपनी धारिया पार्वती को बिठा रखा है। एक साधारण व्यक्ति भी जब कोई ऐसा कार्य करता है तो एकांत में करता है, आप तो भरी सभा में ये कर रहे। तब शिवजी तो मुस्कुराए, शिवजी ने उनकी बात को कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं समझाया उसको, नहीं, शिवजी मुस्कुरा ही दिए, लेकिन पार्वती जी को क्रोध आ गया, और पार्वती जी ने उनको एक श्राप दिया कि क्या तुम ही हो इस संसार में सब कुछ जानने वाले और समझने वाले, भगवान को, भगवान के तत्व को, भगवान के भक्तों को तुम ही समझते हो, जाओ तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तो जब पार्वती जी ने श्राप दिया तो चित्रकेतु ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप ये अपना श्राप वापस ले लो। उन्होंने कहा कि जो मेरे प्रारब्ध में है ना, आपके द्वारा जो भी ये मेरे को श्राप मिला है, ये मेरे प्रारब्ध के द्वारा निश्चित है। और उन्होंने माता कहकर के उनको प्रणाम किया और उनसे जो है जाने का उन्होंने अनुमति मांगी। ये देख करके शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देखा भगवान के भक्त कैसे होते हैं, उनके अंदर कितना उनका विनम्र भाव होता है, किस तरीके से वो जो भी उनके जीवन में संकट आ जाए उसको कैसे वो सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो चित्रकेतु जब असुर योनि में चले गए और असुर योनि में जाने के बाद उनका नाम हुआ वित्तासुर। वित्तासुर को मारा जाना था देवताओं के द्वारा और उसको जो उसका प्रारब्ध था, जो उसको मृत्यु प्राप्त होनी थी, और मृत्यु यूं प्राप्त होनी थी कि उसको भगवत धाम वापस जाना था। ये भगवान के ही सारे प्रयोजन थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब वृत्तासुर बन गए, चित्रकेतु वृत्तासुर बन गए और देवताओं के साथ वो युद्ध कर रहे थे, तब भी उनकी जो वृत्तासुर की जो मानसिक स्थिति थी वो असुरों वाली नहीं थी। असुर होते हुए भी उनके अंदर कैसे लक्षण थे, देवताओं से भी उच्च लक्षण उनके अंदर थे और वो भगवान को अपना आराध्य मानते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि असुर होते हुए भी वृत्तासुर भगवान को शरणागत थे। वास्तव में ये है असली सुंदरता। केवल रूप की सुंदरता से सुंदरता नहीं होती। जब व्यक्ति के गुणों का पता लगता है वास्तविक सुंदरता तब मालूम पड़ती है। कोई सुंदर आपको स्त्री से भेंट हो जाए, बहुत रूपवान हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन कुछ ही समय में आपको पता लग जाए कि इसके हृदय में तो छल और कपट भरा हुआ है, तो क्या वो सुंदरता आपको सुंदरता लगेगी? वो सुंदरता आपको सुंदरता नहीं लग सकती। तो केवल रूप को देख करके जब हम ये संसार में फैसला लेते हैं कि ये बहुत सुंदर स्त्री है, इसका हमको संग मिलना चाहिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। रूप को देख करके ये फैसला नहीं जा सकता। वृत्तासुर एक असुर थे, लेकिन उन्होंने कैसी प्रार्थना करी युद्ध में? उन्होंने ये प्रार्थना करी, आप मैं आपको बताता हूं, प्रभो आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी मिले। आपके सेवकों के सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी मिले। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी मां की बाट जोड़ते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी मां का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम को प्राप्त करने की के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही ये कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभो मैं मुक्त नहीं होना चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों न भटकना पड़े, मुझे इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जाऊं, वहां भगवान के प्यारे भक्तों से मेरी प्रेम पूर्वक मैत्री बनी रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह गे और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, जो आपकी माया से देह गे और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का संबंध ना रहे। तो असुर होते हुए भी वृत्तासुर का ये भाव उसको रूपवान बना रहा है। ये है असली रूप। आपका भाव, आपका मन में क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, इससे रूप की सौंदर्यता निखरती है ना? ठीक है, ये संसार है, ये काम आसक्त लोगों के रहने का स्थान है और यहाँ पर अनेकों कथाएं हमको प्राप्त होती हैं, उसका हम ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे, है ना? और ये नहीं कि केवल पुरुष ही आसक्त होता है स्त्री से, स्त्री ही माया है, केवल ऐसा नहीं है, स्त्री के लिए पुरुष भी माया है। स्त्रियों से, स्त्रियां भी पुरुष से मोहित हो जाती हैं। पुरुष तो स्त्रियों से मोहित होते ही हैं, लेकिन स्त्रियां भी पुरुष से मोहित हो जाती हैं। एक सदन कसाई की कथा आती है शास्त्रों में, तो कैसे उस सदन कसाई को एक युवती अपने घर ले गई और ले जा करके वहाँ कामासक्त होकर के अपने पति का ही वध किया। तो ये भी एक कथा है। इस प्रकार से इन कथाओं की कोई कमी नहीं है, कहीं पुरुष आसक्त है, कहीं पत्नी आसक्त है, और हम किसी को देख करके, किसी के रूप को देख करके वो फैसला हमको नहीं लेना चाहिए। कामांध अगर हम हो गए हैं, काम में अंधे हो गए हैं, तो हम कैसे किसी के रूप को देख सकते हैं? अगर हम क्रोधांध हो गए हैं, क्रोध में अंधे हो गए हैं, तो कैसे हम कोई सही फैसला ले सकते हैं? अगर हम मोह में अंधे हो गए हैं धृतराष्ट्र की तरह, तो कैसे हम फैसला ले सकते हैं जब हमारी आंखें ही बंद हैं, हम अंधे हो चुके, तो कैसे निर्णय ले सकते हैं? निर्णय नहीं लिया जा सकता। शिला प्रभुपाद क्या बहुत अधिक रूपवान थे? अगर शिला प्रभुपाद को देखा जाए तो शिला प्रभुपाद क्या बहुत अधिक रूपवान थे? क्या बहुत सुंदर गायक थे? लेकिन शिला प्रभुपाद के गुणों से, शिला प्रभुपाद के आचरण से आज पूरा विश्व उनको नतमस्तक हो रहा है। ये है असली सौंदर्य। जिस सौंदर्य के पीछे हमको भागना चाहिए, आज शिला प्रभुपाद का सौंदर्य किसको नजर नहीं आता? और जिसको नजर नहीं आता वो है कामांध, वो अंधा है। स्वामी गिरजा स्वामी, गिरराज स्वामी महाराज अपनी युवावस्था में, जब वो युवक ही थे, तो सन 1969 में उनकी शिला प्रभुपाद से भेंट हुई थी और उनके पिता एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, बहुत बड़े एडवोकेट थे, वकील थे, और उनके ये इकलौती संतान थी जो बाद में गिरिराज स्वामी जी महाराज के नाम से। तो जब शिला प्रभुपाद के संग उनको मिला, उस युवक को जब शिला प्रभुपाद का संग मिला, तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। पिता माता पिता अपना बहुत बड़ा धनाढ्य परिवार सब कुछ छोड़ दिया और शिला प्रभुपाद के पीछे पीछे चलते गए चलते गए। और जब वो हिंदुस्तान आए उनके साथ में, तब उनके पिता यहाँ पहुँचे शिला प्रभुपाद के पास और आकर के उनके सामने एक चेक बुक रख दिया साइन करके कि आप इसमें जितनी रकम आप भरना चाहते हो आप इसमें भर लो, लेकिन मेरे पुत्र को छोड़ दो। शिला प्रभुपाद ने कहा ये चेकबुक भी तुम्हारे पास है, ये तुम रखो, मुझे तुम्हारा एक पैसा ऐसा नहीं चाहिए, और तुम अपने पुत्र को भी ले जाओ। जब उनके पिता ने शिला प्रभुपाद की ऐसी वाणी को सुना और उनके ऐसे आचरण को, उनके ऐसे विचारों को देखा, तो वो अंदर ही अंदर समझ गए थे कि मेरे पुत्र ने शिला प्रभुपाद का आश्रय लेकर के कोई गलती नहीं की है, कोई गलती नहीं की। क्योंकि जब तक आप किसी के संपर्क में नहीं आओगे, जब तक आप किसी से उनके विचारों को नहीं जानोगे, जब तक आप किसी से मिलेंगे, तभी तो हमें उनके असली सौंदर्य का पता लगता है। ये बाह्य सौंदर्य ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। ये सुंदर बाला सुंदर स्त्री कितने समय तक ये सौंदर्य रहेगा, ये रहने वाला नहीं है। वास्तव में हमारी सुंदरता, हमारी पहचान हमारे आचरण से और हमारे गुणों से होनी चाहिए। और जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, जब तक हम कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, तो जो कृष्ण के गुण हैं, जो भगवान के गुण हैं, जो श्री सीताराम के गुण हैं, जो राधा श्याम सुंदर के गुण हैं, जो गौर निताय के गुण हैं, वो हमारे में प्रवेश कैसे करेंगे? वो प्रवेश नहीं कर सकते। तो अगर हमारे को भी वास्तव में गुणवान बनना है, भाग्यवान बनना है, तो हमारे को क्या करना है? भगवान और भगवान के भक्तों का आश्रय लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्यथा ये संसार, जिस संसार में हम आए हैं, कितने भी हम अनुभव करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन भगवान ने जो कहा है, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरर्तनो अर्जना मामुपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। ये जो जन्म और मृत्यु का जो दुख है, ये जो जरा व्याधि, ये जो दुख हैं, ये हम कहीं भी चले जाएं ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक, ये तो दुख हैं ही हैं, इसके अलावा भी हमारी जो स्थिति है वो इस संसार में मृग तृष्णा की तरह है। जैसे सूर्य की रोशनी रेगिस्तान में पड़ती है रेत के ऊपर, और उस रेत पे मृग को क्या दिखाई देता है? जल ही जल दिखाई देता है, और वो उस जल के पीछे दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, और अंततः आखिर में समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम इस संसार में रहते हुए उस मृग तृष्णा की तरह इस संसार के सुखों के पीछे न भागें। इस संसार में जो सुख है वो माया का एक छलावा है, उनके पीछे न भाग करके हमको क्या करना है? हमको श्रील प्रभुपाद के इन ग्रंथों का आश्रय लेना है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जो हमको श्रील प्रभुपाद ने दी, इसको बड़े ध्यान पूर्वक इसके एक एक शब्द में अमृत भरा हुआ है। और इस पुस्तक को पढ़ के ही हम अपने दृष्टिकोण को बदल रहे हैं। जो हमारी दिशा है वो दिशा हमारी प्रभुपाद सुधार रहे हैं। जब दिशा ठीक होगी तो फिर हमारी दशा भी ठीक होगी। अगर दिशा ठीक नहीं है तो फिर हमारी दशा कैसे ठीक हो सकती है? और दशा जब ठीक नहीं होगी तो आपके सामने एक सुंदरी आ जाए, एक करोड़ सुंदरियां आ जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। रोना ही रोना। किसी कवि ने गाया था, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो हम भी सुनते थे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जा भी कहाँ सकते हैं। लेकिन कभी हमारे सामने इस्कॉन के भक्त आए हैं, बैक टू गॉड हेड, बैक टू होम, भगवत दर्शन लीजिए और अपने घर जाइए, कोई यहाँ मरना जरूरी नहीं, बार बार का मरना यहाँ कोई आवश्यक नहीं। तो ये है श्रील प्रभुपाद की कृपा, ये है हमारे असली हीरो, ये है हीरो। तो इस प्रकार ये चरित्र भी हमारे को ये एहसास कराता है कि हमारे को किस तरफ जाना है। महाराजा अग्निद्र के पुत्र नाभि फिर भगवान की तपस्या करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, पुत्र इच्छा के लिए उनकी भी पुत्र प्राप्त करने की इच्छा होगी, वो भगवान को, लेकिन आराधना किसकी करेंगे? भगवान की आराधना करेंगे। और आराधना करते करते उनके मन में ये ग्लानी होगी, मैं किस तुच्छ कामना के लिए भगवान का आह्वान कर रहा हूं। ध्रुव महाराज को भी ग्लानी हो गई कि मैं कांच के टुकड़े मांगने के लिए भगवान आपके पास आया था। तो इसी प्रकार से महाराज नाभि को भी ग्लानी हुई कि मैं पुत्र इच्छा से, नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी दोनों ने ही तपस्या करी, लेकिन करी किसकी? श्री भगवान की करी, और श्री भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दी और अपने जैसे पुत्र की कामना की थी उन्होंने। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र तो मिलना मुश्किल है, मैं ही आपकी पत्नी मेरु देवी के गर्भ से प्रकट होऊंगा, और ऋषदेव के रूप में भगवान ने अवतरित हुए। तो किसी भी प्रकार से हमारे मन में कैसी भी कामनाएं हैं, नहीं हैं, कोई भी स्थिति है, हमको क्या करना है? हमको उस आदि पुरुष गोविंदम की शरण लेनी है। तो हम आपको यहीं पे इसको विराम देते हैं, और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टीका हो, कोई टिप्पणी हो, मैं प्रभु से निवेदन करूंगा, प्रभु जी कुछ एक समय के लिए अगर आप रमाकांत प्रभु जी अगर आप कुछ आशीर्वचन दे दें तो इस दास का ऊपर थोड़ी अनुकंपा होगी। एक मिनट के लिए आपसे निवेदन है, प्लीज प्लीज। क्योंकि भक्ति में हम आपके सामने नन्हे शिशु हैं, और नन्हे शिशुओं का उत्साह बढ़ाना आप से हम चाहते हैं जी। नहीं नहीं, तो हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? श्रीमद्भागवतम महापुराण की, शिला प्रभुपाद की।